ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி ஸ்ருணுயாம தேவாஹ, பத்ரம் பஷ்யே மாக்ஷபீத்யஜத்ராஹ, திரைரங்கைஹி துஷ்டுவாகும்ஸஸ்தனூபிஹ யதேம தேவஹிதம் யதாயுஹ. ஸ்வஸ்தி ந இந்த்ரோ வ்ருத்தஸ்ரவாஹ, ஸ்வஸ்தி ந பூஷா விஶ்வவேதாஹ, ஸ்வஸ்தி நஸ்தார்க்ஷோ அரிஷ்டநேமிஹ, ஸ்வஸ்தி நோ ப்ருஹஸ்பதிர் ததாது. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹ. சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம். நமாமி பகவத்பாதம் சங்கரம் லோகசங்கரம், சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம். சூத்ரபாஷ்யக்ருதோ வந்தே பகவந்தோ புனஃ புனஃ. ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்திபேத விபாகினே வ்யோமவத் வ்யாப்த தேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. மேரே பீச்சே போல்னா, நிதயே சர்வ வித்யானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் குரவே சர்வலோகானாம் தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி, வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்தேர் பவது மே சதா. ஓம் நம ப்ரணவார்த்தாய சுத்த ஞானைகமூர்த்தயே, நிர்மலாய பிரசாந்தாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. आपको पत्ता दिया गया, उसमें मंत्र है. पहला मंत्र है पेज नंबर 64. मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पाठ करना. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षम் பரிஷஸ்வஜாதே தயோரன்யஹ விப்பலம் ஸ்வாதுவத்தி அனஷ்னன் அன்யஹ அபிசாகஷீதி. த்வாசுபர்ணா சயுஜா சகாயா சமானம் வ்ருக்ஷம் பரிஷஸ்வஜாதே தயோரன்யப்பிப்பலம் ஸ்வாதுவத்தி அனஷ்ணன் அன்யோ அபிசாகஷீதி. மந்திர கா பஹலே அர்த் கர்த்தே ஹே, பிர் பாஷ்ய சங்கர் பாஷ்ய ஜோ ஆப்கோ தியா கயா ஹே उसके अनुसार उसका अर्थ करेंगे. तो सदा, अब बड़ी हिंदी है उसका दिया हुआ है ना, दो सर्वदा साथ रहने वाले समान आख्यान वाले दो पक्षी है. मिल गया. ये दोनों एक शरीर रूप वृक्ष के आश्रित है. उनमें से एक तो क्षेत्रज्ञ जीव है, अपने कर्म से प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट सुख और दुख रूप बोल का फल का उपभोग करता है, और दूसरा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला परमात्मा कर्म फल का भोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। आप लोग ये पत्ता यहीं छोड़ के जाना, लेना कर मत ले जाना, है ना। अब उसका अर्थ सुनिए आप फिर से। मंत्र जो होता है, ये वेद का मंत्र है, मननात्रायते रक्षति इति मंत्र है। जो मनन करने से, यू टू कॉन्टेम्पलेट अपॉन दैट, अपना गूढ़ अर्थ तब देता है। वेद के मंत्र को समझना सरल नहीं है। अगर भगवान भाष्यकार नहीं होते शंकराचार्य महाराज, तो ये मंत्र का अर्थ हम लोग कैसे समझ सकते हैं। बड़ी कृपा है, शंकर भाष्य आपको इसलिए दिया गया है। पहले मैं मंत्र का अर्थ करता हूं फिर से, और फिर मंत्र का भाष्य का अर्थ करेंगे। द्वा मीन्स द्वौ, सुपर्णो मीन्स पक्षिणो, दो पक्षी है। सयुजा, हमेशा साथ रहने वाले दो पक्षी है। सर्वदा युक्तो, हमेशा साथ साथ रहते हैं। सखाया, क्यों साथ में रहते हैं, दोनों मित्र है। इसका अर्थ होता है दोनों चिन्मय है। क्या का अर्थ, आख्या, प्रकट होना। क्या, दोनों चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है, चिन्मय है। समान रूपो, आप देखेंगे मित्रता किसके बीच में होती है, 10 साल का बच्चा और 80 साल का आदमी का मित्रता होती है क्या? समान उम्र वाले, समानशील स्वभाव वाले के बीच में सख्य होता है, मित्रता होती है। अर्जुन कृष्ण, ये दोनों कौन है? दोनों की उम्र क्या है? समान उम्र है। उम्र भी समान है, शील स्वभाव भी समान है, इसलिए बड़ी प्रेम है। ये दो पक्षी चिन्मयत्वेन समान रूपो, ये दोनों चिन्मय है। समानम अभिषेकम, अभिशेषम एकम, ये दोनों समान है। शील स्वभाव दोनों का समान है, दोनों का स्वरूप चैतन्य आत्मा ही है। कहां बैठे हैं दोनों? वृक्ष पे, समानम वृक्षम। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, ट्री। पेड़ की एक शाखा पे दोनों बैठे हैं। वृक्ष क्यों कहा? उच्छेद सामान्यात वृक्ष तुल्यम शरीरम। ये दो पक्षी जीव और ईश्वर, ये दो पक्षी कौन है? जीव और ईश्वर कहां बैठे हुए हैं? ये शरीर के भीतर जो अंतकरण है, उसमें इन दोनों की अभिव्यक्ति होती है। देखो मंत्र कितना गहन है। इस शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? ये नाशवान है, शिर्यत्वात्। वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं? आवृष्टुच्छेदने, जो काटने पे जिसका अंत हो जाता है। ऐसा ये शरीर जो बनने वाला है, इस मरने वाले शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें दोनों की अभिव्यक्ति होती है। परिशस्व जाते, दोनों कभी अलग नहीं होते, एक दूसरे से लिपटे हुए जैसे हैं। तयो हो परिश्वक्तयो हो जीव ईशयो हो मध्य, ये दोनों के बीच में जीव और ईश्वर में अन्य है, एक क्या करता है, ईशाद भिन्न है जीव, इससे भिन्न जो जीव है वो क्या करता है, पिप्पलम सुख दुखात्मकम कर्म फलम। हमारे जो पूरे पुराने पुराने कर्म है वो समय पे अपना फल देते ही रहते हैं। कर्मणः फलम कर्म फलम, और ये दो प्रकार के फल है, कुछ फल सुखदाई है, कुछ फल आप बढ़िया पुलाव खा रहे हैं और डायबिटीज भी नहीं है, प्रेम से पुलाव खा रहे हैं, बीच में कंकड़ आ जाए, क्या है कि दुखात्मक है, सुख भी है और दुख भी है। ऐसे सुख दुख फल का वो क्या करता है, स्वादु, कुछ फल तो बड़े स्वादु होते हैं, आस्वाद रूपम अति भक्षयति, जीव और ईश्वर में जो जीव है वो अपने कर्म फल को जो पेड़ पे फल के रूप में फलित होते हैं उनको खाता है और सुखी दुखी होता है। ईश्वर क्या करता है, उसी पेड़ पे बैठकर अन्य जीवाद भिन्न है विलक्षण ईश्वर है, ये जीव से बिल्कुल विलक्षण जो ईश्वर है, मायोपाधिक ईश्वर है, वो क्या करता है, अनश्नन अभुंजान, बिल्कुल खाता नहीं है। याद रखना ईश्वर नित्य उपवासी है, कभी कुछ खाता भी नहीं है और पीता भी नहीं, क्योंकि उनके पाप पुण्य के कर्म नहीं है जिसको वो भोगे। जीव अपने कर्म फल को भोगता है, ईश्वर के तो कर्म फल है ही नहीं, वो तो क्या है, साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र, अवभासक मात्र है। अभिचाकशीति, बहुत सुंदर शब्द है उपनिषद का, अनश्नन अभुंजान, नहीं खाते हुए अभिचाकशीति केवलम पश्यति। देखो हम लोग भगवान के सामने 56 भोग रखते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमको मालूम है कि खाने वाले नहीं है तब तो रखते हैं वहां। अगर भगवान भी उठा के लड्डू खाने लगे तो आप एक ही लड्डू देंगे कल से, क्यों, खाना शुरू किया आपने। हम जानते हैं वो क्या करता है, देखता रहता है 56 भोग को, वो आरोकता नहीं, कौन आरोकता है, हम ही लोग। वो तो नित्य क्या है, अभिचाकशीति, ओनली ऑब्जर्वर, ओनली अनइन्वॉल्व विटनेस, जिसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं है, देखता रहता है, सबको प्रकाशित करता रहता है, एफल्जेंट विटनेस। ये हो गया दर्शन मात्र ही तस्य प्रेरयितृत्वम, अगर वो नहीं है तो जीव भोजन नहीं कर सकता है, ईश्वर की कृपा से जीव में एक कर्म फल भोगने की भी शक्ति आती है, इतना मंत्र ने बता दिया। अभी आप देखेंगे आपके पास शांकर भाष्य दिया है, पढ़ना देखना। मैं कुछ कुछ लाइन पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा पढ़ना, थोड़ा शांकर भाष्य पढ़ेंगे आपको पुण्य लगेगा, है ना। आप देखेंगे एक दो तीन चार पांचवी लाइन में, पांचवी लिपि में, पांचवी पंक्ति देखिए, बीच में से लिखते हैं द्वा द्वौ सुपर्णो, है ना, मिल गया। सो पूरी लाइन पढ़े, सूत्रभूतो, पढ़ो, मंत्र है परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। परमार्थ वस्तु जो परमेश्वर परब्रह्म है उसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, उसका स्पष्ट बोध प्राप्त करने के लिए, अपनी बुद्धि में आरूढ़ करने के लिए ये मंत्र श्रुति माता प्रकट करती है। अंगी अंगिरा किसको उपदेश कर रहे हैं बताओ भाई? शौनक जी को उपदेश कर रहे हैं। कल बताया था ये पूरा संवाद किसके बीच में है, अंगिरा और शौनक। शौनक हो भाई महाशाल है, आपको बताया था बड़ा उदार है, दानवीर है और चित्त शुद्ध है। उन्होंने प्रश्न किया था कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, नोइंग हुम एवरीथिंग इज एज वेल नोन, व्हाट इज दैट, ऐसी क्या चीज है जिसको जान लेने पर सबका ज्ञान हो जाता है। और मैंने लॉजिकल बताया था एक के ज्ञान से सबका ज्ञान व्यवहार में प्रायः देखा नहीं जाता है। आपको गुजराती आती है इसका अर्थ ये नहीं कि आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, अंग्रेजी भाषा का अलग ज्ञान है। आप मेडिकल साइंस जानते हैं इसका अर्थ ये नहीं है इंजीनियरिंग भी आपको मालूम पड़ गई, उसका अलग अभ्यास करना पड़ता है। तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान व्यवहार में ऐसे नहीं देखा जाता है, फिर भी लोग में देखते हैं। अगर सोने का ज्ञान सुवर्ण का ज्ञान हो जाता है तो सुवर्ण से बने हुए सब पदार्थ का ज्ञान हो जाता है कि ये अंगूठी भी सोना है, ये गले का हार भी सोना है, ये मुकुट भी सोना है। सर्व कार्य कारण से अभिन्न होने के कारण, कारण के ज्ञान से सब कार्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक के ज्ञान से सबका ज्ञान। जगत कारणम ब्रह्म एक ही है, वही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वही मसाला है और वही बनाने वाला है। कुंभार भी वो, मिट्टी भी वो, दोनों वो है। इसलिए उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए यहां उसको ठीक ठीक समझाने के लिए श्रुति माता बहुत बढ़िया दृष्टांत देती है। अब आप देखिए द्वा द्वौ सुपर्णो, सुपर्णो मानी पढ़ी आगे शोभन पत्तनो, सुपर्णो पक्षी सामान्याद्वा सुपर्णो। दो पक्षी है पत्तनो, जिसके पंख बड़े सुंदर है, चमकते हुए हैं, ऐसे ये दो पक्षी यहां कहते हैं सयु, ये दो पक्षी जो है जिनके पंख बड़े चमाचम चमकते हैं, पंख बड़े चमकते हैं, ऐसे ये शोभन पत्तनो, अच्छे शोभायमान के पंख है, सुपर्णो, दो सुपर्ण है। श्रुति माता सुपर्णा कहती है पर व्याकरण के दृष्टि से क्या होना चाहिए, सुपर्णो होना चाहिए। पक्षी सामान्यत्वात्, ये सामान्य पक्षी है, सुपर नो, ये कैसा है? तो आगे पढ़िए, सयुजा सयुजौ सहैव सर्वदा युक्तो। ये ऐसे हैं कि कभी अलग नहीं होते हैं, ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। जहां एक पक्षी है वहीं पर दूसरा पक्षी है, ये दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। बिंब और प्रतिबिंब साथ में ही रहते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन, ये कभी अलग नहीं होते हैं। आप अगर आईने के सामने खड़े हो जाए, आपका प्रतिबिंब आईने में पड़े, वो आपसे भिन्न है कि अभिन्न है? आपसे अभिन्न है। और कभी आपसे अलग रह सकता है? ये हो सकता है कि आप चले जाओ और प्रतिबिंब आईने में दिखता रहे? ऐसा नहीं हो सकता है। बिंब प्रतिबिंब हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे ये दो जो पक्षी है, सुंदर पाख वाले चमाचम चमकते हुए पक्षी, सयुजो कहते हैं, सखाया सयुजो सहैव सर्वदा युक्तो, साथ साथ रहते हैं। क्यों? सखाया सखायो समान आख्यानो समान अभिव्यक्ति कारण कारणो एवं भूतो संतो समानम अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठानतया एकम वृक्षम। थोड़ा कठिन लगेगा पर पढ़िए, अच्छा है आपके लिए। जब कहा दोनों पक्षी साथ साथ रहते हैं, पक्षी का स्वभाव है आकाश में उड़ता तो है पर आके कहीं ना कहीं कहां बैठता है? कोई वृक्ष की डाली पर बैठता है। ये दोनों भी एक वृक्ष की डाली पर बैठे हैं, इसलिए कहते हैं सखायो समानाख्यानो, दोनों की अभिव्यक्ति समान अभिव्यक्ति, दोनों एक जगह पे प्रकट हो रहे हैं। दोनों का कारण एक ही है, जिससे ये दोनों है वो कारण दोनों का एक ही है। समानम अविशेषम उपलब्धि अधिष्ठान, ये पंख वाले हैं, स्वरूप जीवात्मा और परमात्मा समान है, और दोनों की उपाधि के कारण भेद है। आखिर तो दोनों एक ही है। अभी आप देखिए, आज भी होगा मुझे मालूम है, 12वां और 15वां अध्याय का पाठ करते हैं कि नहीं? उसमें श्लोक आता है पहला 15वां अध्याय में, ऊर्ध्वमूलम अधःशाकम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम्। अश्वत्थ है, अस्वस्थ नति, ओके, कई लोग अस्वस्थ बोलते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधःशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, यही वृक्ष की चर्चा यहां पर है। श्री कृष्ण को चुराने की आदत वृंदावन से पड़ी है। मक्खन चुराया और जब अर्जुन को गीता का प्रवचन करने लगे तो वेद के मंत्र को भी चुराया। वेद के मंत्र ज्यों की त्यों गीता में रख दिया, न जायते म्रियते वा कदाचित। ये सचमुच में चोरी नहीं है। श्री कृष्ण वेद का प्रामाण्य दिखाते हैं। वेद निश्वास है, सहज प्रकट हुए हैं, और गीता भगवान की वाणी है। एक सांस है, दूसरा शब्द है। दोनों में एकता बताने के लिए पूरा का पूरा वेद का मंत्र थोड़ा यहां वहां फर्क करके पूरा का पूरा बताते हैं। ऊर्ध्वमूल अवाक्षाक, ये वेद का कठोपनिषद का मंत्र है। अश्वत्थ प्राहुरप्ययम्, तो यहां आपको वो भी याद होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये दोनों पक्षी, जीव और ईश्वर, जो समान स्वभाव वाले चैतन्य है, दोनों की अभिव्यक्ति इस अंतकरण में, इस सूक्ष्म शरीर में, और दो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है, ये दोनों की अभिव्यक्ति इस वृक्ष में शरीर में होती है। अपने देह का नाम वृक्ष रखा, क्यों? आप पढ़िए दूसरे पन्ने पर, पन्ना बदल जाएगा।